प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर
परमेश्वर ने आकर के हमें इस काल के जाल से जब पता लगा कि ये अब कुछ मेरे पर सेट हो गए हैं, ज्ञान कुछ इनको समझ में आ गया, फिर उनको समझाने लगे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा ठीक नहीं है, तो उसके बाद फिर परमात्मा ने जो वो बच्चे जो वहां सुनकर गए थे उन्होंने अपने घरों में जाकर जिक्र किया, रिश्तेदारियों में जिक्र किया, जिस कारण से वो विरोध बन गया और कबीर परमात्मा के पीछे वो अज्ञानी ऋषि गुरुओं ने उस जनता को लगा दिया। फिर भी परमात्मा ने अपनी शक्ति से उनको बहुत सा सुख दिया, जिस कारण से 64 लाख शिष्य कबीर जी के उस समय शिष्य हुए थे जब परमात्मा सन 1398 मैं प्रगट हुए थे पहली बार, यानी कलयुग में उन्होंने एक लीला की थी जो एक मनुष्य जीवन, पूरा मनुष्य जीवन एक मनुष्य की तरह जनसाधारण की तरह जीने का, परमात्मा एक प्रत्येक युग में ऐसा क्रिया करते हैं, उसके आधार से उन्होंने सन 1398 में शिशु रूप धारण किया लहर तारा तालाब बनारस में काशी में भारतवर्ष में, उस कमल के लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर आकर के एक बालक रूप धारण किया और वहां से फिर उनको नीरू नीमा नाम के एक जुलाह उठा ले गए और वहां धीरे धीरे बड़े हुए, तो अपनी इस जिस उद्देश्य के लिए वो आते हैं प्रत्येक युग में उसको स्टार्ट किया और परमात्मा जो है यही यथार्थ ज्ञान दिया करते थे जो आज दास आपको बता रहा है। परमेश्वर कबीर जी प्रत्येक युग में आते हैं और अपना यथार्थ ज्ञान बताते हैं। अब आपको थोड़ा सा प्रमाण देंगे कि कबीर भगवान ये पूर्ण परमात्मा है जो बनारस में आए थे और शिशु रूप धारण किया था, और जब वो शिशु रूप धारण करके आते हैं तो उसमें उनकी परवरिश कवारी गायों से होती है, परवरिश की लीला, यानी वो और कोई दूध नहीं पीते ना किसी अन्य माता का, क्योंकि माता तो उनकी होती नहीं, तो क्या होती है कि दूसरी बहन किसी के बच्चा पैदा हुआ हो तो वो दूसरे बच्चे को दूध पिला देती है जिसकी माँ के सतन में दूध ना हो, लेकिन वो भी नहीं पिया मालिक ने, ना ही किसी अन्य पशु पक्ष का दूध पिया, तो उसमें उन परमात्मा ने उनको जो है प्रेरणा दी थी नीरू नीमा को, एक कुंवारी गाय लाए थे। अब तो जो उद्देश्य आज के सत्संग का है वो कुछ और है और इस उद्देश्य से हम ये शॉर्ट में बता रहा था। तो कुवारी गाय का दूध परमात्मा ने पान किया, उसके बाद वो जब तक वो दूध पान करने करते थे तो कुवारी गाय ही उनका दूध की व्यवस्था कुवारी गाय से होती थी, वो परमात्मा की रजा से गाय दूध देती थी। एक तो ये प्रमाण आपको दिखाएंगे वेद में, और दूसरा ये वेद बताते हैं कि परमात्मा की लीला भी यही है कि वो परमेश्वर जब आते हैं अपना तत्व ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से यानी कविताओं के माध्यम से उच्चारण करके अपने आप बोलता रहता है, जिस कारण से उनको एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त होती है। उसको ना समझ के भगवान ना समझकर उनको कवि कहने लग जाते हैं, लेकिन वो होता है परमात्मा। अपने आत्माओं, अब जैसे वैसे कथा कबीर जी के बारे में, क्योंकि ये जो उद्देश्य है हमारा यहां आज के सत्संग का, कबीर परमेश्वर की महिमा बताएं आपको। वैसे तो प्रत्येक सत्संग का उद्देश्य ये होता है कि भगवान की महिमा से आपको परिचित कराया जाए, लेकिन ये आज जो ये प्रगट दिवस के रूप में आज का जो समागम कल से प्रारंभ हो रहा है हुआ है, तो ये प्रगट दिवस के रूप के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष में ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को ये सत्संग किया जाता है, और इसका उद्देश्य होता है कि इस दिन परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आए थे, शिशु रूप धारण किया था, और बड़े होकर के उन्होंने इस तत्व ज्ञान का डंडोरा पीटा था। तो वो जानकारी आपको दें कि कबीर परमात्मा, उसके उद्देश्य हमारा कि कबीर जी के बारे में ये बतावा कि वो पूर्ण परमात्मा है। वैसे तो ये कथा कबीरपंथी सुनाते आया करते थे, जो कबीरपंथी हैं वो भी कबीर जी की लीला कबीर सागर से पढ़कर बताते रहे हैं समाज को, लेकिन ठीक है उनके साथ थोड़े बहुत लोग जुड़ अवश्य गए हैं, लेकिन वो स्थिर नहीं है, उनको कोई सुख नहीं हो रहा, क्योंकि परमात्मा की महिमा सुनाने का लाभ कुछ और होता है, और सुनाने वाला अधिकारी होना चाहिए, उसका असर होता है। अब जैसे ये लाखों की संख्या में प्राणी इन संतों के साथ जुड़े हुए, ये क्यों जुड़ गए? ये ऐसे जुड़ गए कि इन्होंने कबीर जी के दोहे, कबीर जी के शब्द वो सुनाए सत्संग में, और उन्हीं से फिर आगे व्याख्या जैसी वो उलट सुलट की वो अलग बात है, लेकिन उस कबीर जी की वाणी में इतनी अट्रैक्शन है कि आत्मा उनके साथ चिपकती चली गई, क्योंकि वो सुना तो देते हैं, जैसे ये चेतावनी के शब्द हैं, भाई बदले रे भगवान तेरा काम आवेगा, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, यानी इस तरह की जो कथा सुनाते हैं, भाई जो भक्ति नहीं करते उनको ये दुख होता है, जो भक्ति करते हैं उनको ये सुख होता है, ये कबीर जी की वाणी में है। तो इसको सुनकर आत्मा उनके पीछे लागी, लेकिन उनसे लाभ कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनकी शब्द में शक्ति को ना। अब प्रत्येक बच्चे को माता पिता ज्ञान देते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना, बेटी ऐसे नहीं करना, ये बुरा काम है, इसको अच्छे करना, ऐसे करना चाहिए, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता माता पिता के उसका। अब प्रत्येक समाज में प्रत्येक बुजुर्ग अपने बच्चों को माता है या पिता, दादा है या दादी जी, वो शिक्षा अच्छी देते हैं, और फिर भी समाज गिर गया, सतर कितना, संत जन से भी सत्संग कर रहे हैं और संतों की कोई कमी नहीं है, वर्तमान में तो विशेष बोलबाला है संतों का, और श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं, और समाज गिरता जा रहा है, किसी का कोई असर नहीं, किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं रही। इसका कारण ये रहा कि उन संतों की शब्द में शक्ति को नहीं, और उनसे उनके असर नहीं हो सकता उन बच्चों के, वो तो श्रद्धालु हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, परमात्मा के इच्छुक हैं, चले जाते हैं, थोड़ी बहुत देर सत्संग अच्छा लगता है सुन भी लेते हैं, लेकिन बाहर आकर के उनके वही कर्म प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि न तो उनके कोई कर्म प्रारब्ध के कर्म संस्कार समाप्त होते जिस कारण से उनको सुख हो, ताकि वो बुराइयों से बच सके। पुण्यात्मा, आप जब इस मार्ग से जुड़ जाओगे और सच्चे दिल से आप मोक्ष चाहोगे, आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। बुरा करोगे तो आपका डबल होगा, क्योंकि परमात्मा कबीर जी नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके पाप कर्मों को रोक दिया जो आपको दुखी करेंगे, और वो अभी आपके पाप नाश नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि ये कितना चलेगा हमारे साथ, ये काल के पाड़े में फेरना चला जा, तो उससे क्या करेंगे, वो आपके पाप कर्मों को रोक देते हैं और आपको सराहत मिलनी प्रारंभ हो जाती है। कुछ दिनों के बाद आप छोड़ जाते हो, या फिर आप बीच में कुछ थोड़ा बहुत हेराफेरी करने की चेष्टा करते हो, किसी कोई जो मर्यादा हमने बता रखी है उसके विरुद्ध क्रिया कर देते हो, आपको तुरंत हानि हो जाती है, और फिर आपको समझ में भी आ जाती है कि मैंने ऐसी गलती कर दी, आज मुझे इसलिए हानि हुई, तो दूसरी बार आप वो गलती नहीं करते। और दास ने आपको बताया हुआ है कि जिसका कोई, जैसे हमने मर्यादा आपको बता रखी है, इन मर्यादाओं में रहकर आप भक्ति करो, आपको न्यारे सुख होंगे, और जो मर्यादा तोड़ देगा उसका नामखंड हो जाएगा, और नामखंड हो जाने से आपको परमात्मा की शक्ति मिलना बंद हो जाएगी। जैसे बिजली का कनेक्शन आपने ले रखा है और वो कनेक्शन कट गया, तब पहले तो आपका पंखा भी चला था, ट्यूब भी जग रही थी, और भी आप सब कार्य कर रहे थे, अपना आटा भी पीस रहे थे, जल भी निकाल रहे थे मोटर तय, फिर वो बंद होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपका कनेक्शन कट गया। इसी प्रकार से जिसने उपदेश ले लिया और आखिरी सांस तक मर्यादा निभानी पड़ेगी, मर्यादा में रहो, आपका नाम खंड ना हो, तो आपको परमात्मा की शक्ति का लाभ प्रॉपर मिलता रहेगा। तो ऐसे जब आप मर्यादा खंड कर देते हो, आपका कनेक्शन कट जाता है, तो आपको राहत मिलनी बंद हो जाती है, दुख आ जाते हैं। फिर आप आकर के यहां, आपको बताया है कि बार बार बकवाद नहीं करें, बार बार जानबूझ के नाम को नहीं तोड़ना चाहिए, और किसी कारण से, क्योंकि नए नए बच्चे हैं, समाज में जाते हैं, अन्य समाज जो है हमारी मर्यादा के टोटली विरुद्ध काम कर रहा है। एक परिवार में एक सदस्य नाम लिया और पांच सदस्य आन उपासक है, हमें भी पता है कि हमारे बच्चों का ये नाम शीघ्र सी सेट होने नहीं देंगे, तो परमात्मा के आदेश से ये ऑप्शन छोड़ दिया है कि एकाध बार किसी का ऐसा नाम खंड हो जाए तो दोबारा तुरंत ले लेना चाहिए, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। तो अब बहुत से बहन बेटी भाई आते हैं, जी मेरे पर गलती होगी, माफ कर दो, क्योंकि उन्होंने गलती की, उनको दूना दुख हो गया मर्यादा तोड़ते ही, और पहले सुख होने शुरू हो गए थे, कान पकड़ते हैं जी आगे से कोई कहता जी बीड़ी पी ली मैंने एक दिन और मुझे ऐसी हानि होगी, आगे नहीं पीऊंगा, दोनों कान पकड़ता हूं। अच्छा भाई आगे गलती ना करना, नाम दोबारा दे देते, फिर बार बार करेगा तो फिर मालिक नहीं सुनेगा तेरी बिल्कुल भी, तो इस डर से फिर वो गलती बंद हो जाती है, ना वो चोरी कर सकता, क्योंकि ज्ञान हो जाता है कि जो अगर हम चोरी करके सेठ बनना चाहते हैं, दूना दुख होगा, डबल पाप हमारे लगेंगे, और वो चोरी किया हुआ धन आपके पास नहीं रह सकता, ये गारंटीड बात है। अब वो पाप आपके साथ रह जाएंगे जो चोरी करने से बने। एक भक्त का इकलौता पुत्र था और उसको उसके दोनों गुर्दे फेल हो गए। उसने बताया कि मेरा इकलौता पुत्र था और दोनों गुर्दे फेल हो गए। उसके ट्रीटमेंट में मैंने लगभग 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए लगाए, यानी 10-15 साल पहले की बात है। वो कैसे लगे? पहले तो जाड़े झपटे वाले के चक्कर में फंस गया, फिर डॉक्टरों के, लोकल डॉक्टरों के चक्कर में फंसा रहा, फिर पीजीआई दिखा रो तक में बहुत देर हो चुकी थी। कहने लगे दोनों गुर्दे कंडम हो गए और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली ले जाओ। वहां ले गए तो उन्होंने बताया भी अपना किसी रिश्तेदार का कोई गुर्दा दान कराओ, तो उन्होंने किसी से ऐसे कर करा कर गुर्दा दिवाया, लड़का स्वस्थ हो गया, 3.5 लाख रुपए लाए गए। गुर्दे तो ठीक हो गए, एक दिन बस एक्सीडेंट में वो लड़का मारा गया। अब फिर उस बलि आत्मा ने फिर अपनी सारी सत्संग सुना, उसका सौभाग्य था कि सत्संग सुनने को मिल गया उसको। फिर वो फूट फूट कर रोया मेरे पास आके, कहने लगा जी आज का जो सत्संग आपने सुनाया, मैंने ऐसे ही सुनाते हैं भी जो पाप करते हैं वो पाप तो उनके बैड अकाउंट में लिखे जाते हैं, और जो धन कमाने के लिए जो उन्होंने हथकंडे अपनाए वो पैसा इकट्ठा किया वो पैसा नहीं रहेगा, गारंटीड बात है, क्योंकि आपके भाग्य में नहीं है। और प्रारंभ से अधिक तुम चेष्टा भी करते हो करके इधर उधर से, तो वो किसी ना किसी से तरीके से आपका खत्म होगा। किसी की भैंस मर जाएगी, किसी के बिजनेस में घाटा आ जाएगा, या कोई और कारण बन जाएगा, कोई बीमारी लग जाएगी, वो पैसे आपके ऐसे जाएंगे, और वो पाप सुरक्षित रह जाएंगे आपके, वो धन नहीं रहेगा। धन रहेगा कबीर परमात्मा की भक्ति से आपके भाग में ना होगा तो भी वो लिख देगा इसके पास वो पावर है। तो उसने फिर बताया कि आपने सही बताया जी, मेरे साथ ऐसे ऐसे बनी, मैं बहुत निकम्मा आदमी था, पहले ये रिफल आती थी, इन टेप कैसेट चाले चाले थे, सन 1978-77 की बात बताओ था, और उन टेपों में ये कैसेट गला कर डाला करते, उसको ऊपर मोर तला मारता सोनी की, और लाता वहां तोल के भावते वो रिफल, और वो कैसेट बनवा के उसका सारा खर्चा मेरा 2 रुपया का एक कैसेट पाया करता, 2-2.5 रुपए का भरके भी सारा कुछ कर लेता था, और मैं सोनी की बना के मोर लाकर उनको 30-30, 35-35, 25-25 की बेचा करता था। और थोड़े से दिन मेरे पास बहुत पैसा हो गया, फिर मेरा इकलौता पुत्र बीमार हो गया, कमाए होंगे 2 लाख, लाग गए 3.5 लाख, उस समय 2 लाख बहुत मुश्किल से कमाए जाते थे, और बेटा भी ना रहा जिसको सुखी बनाने के लिए मैं पाप किया करता था कि मेरा बेटा सुखी रहेगा, कारों में चलेगा, इसके लिए घना धन जोड़ दूं, वो धन रहा ना वो बेटा रहा। तो पुण्यात्माओं, फिर ये परमात्मा की वाणी से आपको डर लगने लग जाएगा, आप पाप नहीं कर सकते। तो ये अब समाज सुधार होगा, क्योंकि जो लाभ आप स्वयं बुरे कर्मों से करना चाहते थे वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा। और परमात्मा कबीर जी की भक्ति में इतनी शक्ति है कि आपके प्रारब्ध में नहीं है तो भी लिख देगा, तो भी आपको दे देगा, यदि वो आवश्यक समझेंगे तो। पुण्यात्मा, आज के सत्संग में आपको ये दास जो क्लियर करना चाहता है वो ये है कि हम परमात्मा कबीर जी को परमात्मा सिद्ध करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि कबीर जी की महिमा उनके जीवनी में लिखी, जीवन चरित्र में लिखी हुई, ये कबीर पंथी साधु संत जो हैं वो सभी जगह सुनाते हैं और कबीर जयंती मनाते हैं। ये 26 जून इसको सभी जगह भारतवर्ष में हजारों स्थानों पर कबीर जयंती मनाई जाएगी, और कल के दिन वो बहुत से स्थानों पर परमात्मा की महिमा भी सुनाई जाएगी, कबीर जी की जीवनी से पढ़कर वो सुना देते हैं। लेकिन उनका असर आम आदमी पर नहीं पड़ता, क्योंकि जो परंपरागत कबीर पंथी पहले से बने हुए हैं, कबीर जी की शरण में आए थे कुछ, और कुछ उनके परंपरा से चलते हुए आ रहे हैं, वही जनसंख्या बढ़ती बढ़ती, क्योंकि लगभग 16-17 पीढ़ी जा चुकी है कबीर जी के समय से, तो वो जनसंख्या बहुत हो रही है कबीर पंथियों की। कुछ एक नए भी 1-2-10% नए भी जुड़ जाते हैं, तो वो कथा तो सभी सुनाते हैं, कबीर जी ने ऐसा कर दिया, कबीर जी ने ऐसी लीला कर दी, कबीर जी ने ऐसा सुख दिया, कबीर जी ने ये किया, लेकिन उसका असर जन साधारण पर नहीं होता, क्योंकि काल के दूतों ने, नकली ऋषि महर्षियों ने परमात्मा की परिभाषा चेंज कर रखी है, और कबीर जी ने ऐसा कर दिया वो जचती नहीं, क्योंकि वो तो एक धानक था, जुलाया था, वो तो एक कवि था, और वो तो गरीब सा आदमी था। हम ये मानकर उस परमात्मा को परमात्मा स्वीकार नहीं कर पा रहे। ये दास सन 1994 से गुरुदेव के आदेश से ये नाम देने लगा था और ये सत्संग करने लगा था। तो इस दास के माध्यम से उपदेश लेने के बाद भक्तों को राहत तो बहुत मिलन लगेगी। और ये दास केवल कबीर जी की कथा सुनाया करता था, कबीर जी ऐसे हैं, कबीर जी ऐसे आए थे, कबीर जी ने ऐसे लाभ दिया, ऐसे मरी हुई गाय को जीवित कर दिया, कमाल एक नाम का लड़का था, उसकी मृत्यु हो गई थी, उसको किसी ने, उनके घर वालों ने जल प्रवाह कर दिया था, वो जीवित कर दिया, एक लड़की को जीवित कर दिया। तो वो भगत जिनको सुख हो गया था इस दास के द्वारा दिए गए उपदेश से, कबीर जी की शक्ति थे, तो वो तो इन कथाओं को सुन लेते थे और वो किसी और को बताते थे तो वो हंसी मजाक करा करते उनकी, क्यों रहने दे बस, कबीर ने भगवान बताओ, देखो यू कबीर ने भगवान बताओ है, कबीर तो जुलाहा था, तो कवि था। तो इस तरह यह प्रोग्रेस कम हो रही थी हमारी। अब दास का उद्देश्य है कि इस परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करूं आपके हृदय में, कहां से, जिन सदग्रंथों को आप जी एथेंटिक मानते हो, प्रमाणित मानते हो कि उनमें जो लिखा है वो सत्य है और उसी के आधार से आप साधना कर रहे थे, उनमें से कौन कौन से सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद और यजुर्वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र 18 पुराण, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये हमारे मान्य सदग्रंथ हैं और इनमें जो लिखा हुआ फिर हमने मान्य भी होना चाहिए और होगा। अनाड़ियों की तो बात है अलग, जो स्वार्थी हैं या मूड हैं और वो सदग्रंथों में लिखी बातों को, ज्ञान को भी नहीं मानते हैं, तो वो तो पड़ो बाड़ में। और जिनको भगवान चाहिए और उन्हीं के सदग्रंथों में जो कुछ लिखा है उसको वो मानेंगे ही मानेंगे, मानना पड़ेगा। तो दास ने प्रार्थना की प्रभु से कि हे प्रभु, ये तो स्लो स्पीड है और आप जी के चंद भक्त बनते हैं जिनको सुख, क्योंकि एक जैसे हम आपको परमात्मा सुख तो खूब दे सकते हैं और आपके घर में लाभ भी शुरू हो जाते हैं, आपको धन भी मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आपको ज्ञान नहीं होगा तो आपको मान लीजिए 10 सुख हो गए और एक मालिक ने नहीं दिया जो आप डिमांड कर रहे हो, क्योंकि जीव की डिमांड बालक जैसी होती है। कैसे होती है, जैसे बच्चा बालक अबोध क्या करता है, अग्नि चूल्हे की तरफ चल लेता है, वह आग जो जल रही होती है, और या दीपक कहीं रखा हो, दीपक जल रहा हो, बच्चा तो उसकी तरफ चल लेता है उसको पकड़ने के लिए, और माता पिता या भाई बहन जो बड़े हैं वो उसको तुरंत उठा लेते हैं कि कहीं दीपक को पकड़ ना ले, या तो दीपक को ऊंचे रख देते हैं या उस बच्चे को उठा लेते हैं, तो फिर वो रोना प्रारंभ कर देता है उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए। लेकिन वो वस्तु उसको वो बच्चे माता पिता नहीं दे सकते क्योंकि उसके लिए हानिकारक है। तो अब ये ज्ञान से आपको ये पता लगेगा कि जो वस्तु हम डिमांड कर रहे हैं और परमात्मा नहीं दे रहा है, वो नहीं देगा, क्योंकि आपको आगे चल के ये हानि कर सकती है, आपके लिए अहित हो सकता है, और आप उसको मान रहे हो अच्छी वस्तु, तो वो परमात्मा कभी नहीं देगा, चाहे आप इस मार्ग पर रही हो चाहे ना रही हो। तो कहने का भाव यह कि जब तक ज्ञान नहीं था सदग्रंथों और वेदों और गीता जी में और पुराणों में, ग्रंथों में, बाइबल में, कुरान में और ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब में, इनमें हमें प्रमाण नहीं मिले थे, तो दास के पास और कोई विकल्प नहीं था, केवल कथा सुनाया करता, कबीर जी की महिमा सुनाता था और लाभ भी होते थे। और क्या होता था, जिसको चार लाभ हो गए, पांचवा किसी कारण से नहीं हुआ या उस मर्यादा भंग कर दी, इस कारण से भी नहीं होता है लाभ, तो हम दूसरी बार वहां जाते थे तो पता लगता था वो तो नाम छोड़ गए। क्यों छोड़ गए, कि उन्होंने ऐसी कहा था, हमारा न्यू हो जाता हम ठीक से ना, तो हम नाम नहीं रखेंगे। अच्छा, तो ऐसे था कि वहां जैसे एक गांव में हम जाते थे संस्कार करने, ज्ञान सुनकर एक दूसरे का सुख सुनकर 10-20 नाम ले लेते थे, तो दूसरी तीसरी बार जाते थे तो 5-4 तो उनमें छोड़ जाते थे, इस कारण से कि हमने ये मांग मांगी थी हमारी पूरी ना हुई, और उसमें वो मर्यादा भी पूरी नहीं रखते थे, तो ये समस्या रही हमारे साथ, यानी हमारा 20% रिजल्ट उदास को मिला। जब तक, कब तक? जब तक ये प्रमाण मालिक ने इस दास के सामने नहीं रखे थे वेदों और गीता और पुराण और कुरानों के, कुरान और पुराणों के। तो एक दिन ऐसे ही काफी क्रोथाश्रम बन गया था, 2000 की बात है, सन 1999 में क्रोथाश्रम की स्थापना होगी थी। 2000 में काफी मायूस सा था दास के, 4-5 वर्ष हो गए दास को, दिन रात में मजदूरी की है, बहुत प्रयत्न किया है, दिन रात गांव गांव में जैसा भी कहीं व्यवस्था रुकने की, पीने की, खाने की हुई, कर करके ये ज्ञान मालिक का कबीर जी की दया से ही प्रचार किया कि प्रभु ऐसे तो ये लोग जैसे, ये तो गांव के भोले आदमी हैं, दुखी हैं, कोई रिश्तेदारों से शुरू किया हमने, ये तो मान रहे हैं कि आप भगवान हो, लेकिन जो गीता जी को मानते हैं, पुराणों को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, उनको मनाना प्रभु बड़ा कठिन होगा। एक दिन ऐसी प्रेरणा की परमात्मा ने कि गीता जी जो हम रोज पढ़ा करते थे, उस गीता जी को उठाकर देखा कि भगवान का ज्ञान सही। परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, लेकिन वेदों में मेरे पाने की विधि नहीं है, बस इतनी त्रुटि है, और वो त्रुटि बहुत हानिकारक है। तो मैंने सोचा कुछ तो ज्ञान मिलना चाहिए, परमात्मा का ज्ञान तो गलत हो नहीं सकता, उनकी वाणी गलत नहीं हो सकती, वचन गलत नहीं हो सकते, ये कहा कि मेरा ही भेद है। तो गीता जी को उठाकर देखा, उसमें कम से कम भी 20 जगह पर यह लिखा है, गीता ज्ञान दाता कहता कि और परमात्मा है, उसकी साधना करने से लाभ होगा। की फिर उसको गहराई से पढ़ा, ये तो अपरिषद हो गया, जब इस गीता ज्ञान दाता भी किसी और के बारे में कह रहा है तो गीता बहुत सही होगी होगी। तो इसका एक, इसको पढ़ा, परमात्मा के उस, हमारी आंखों में पहले मोतियाबिंद था, अज्ञान था, परमात्मा के तत्व ज्ञान से मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया। वही गीता जी जो दास पहले पढ़ा करता था और कुछ भी समझ में नहीं आया करता था, क्योंकि बुद्धि काल ने जकड़ रखी थी, अब परमात्मा की कृपा से वही बुद्धि ओपन होगी। फिर उसके गीता जी को नए सिरे से अनुवाद किया, उसका नाम रखा गहरी नजर गीता में। फिर वेदों को देखा, ओ तेरे की, वेद तो सारे ही कबीर परमेश्वर की महिमा से भरे पड़े हैं। अपने आत्माओं, इन प्रमाणों को देखकर आज ये परमात्मा का नया बाग लग रहा है। चंद ही दिनों में लाखों की संख्या में भक्तात्मा श्रद्धालु, जिनको परमात्मा चाहिए, वो हमारे से जुड़ चुके हैं। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक तो ये मर्यादा जो गलत साधनाओं हम करते थे, दूसरे इस कलयुग में काल ने या गुटी सूटी की बीमारी सब कहला दी, कोई बीड़ी पी हुआ है, कोई सुल्फा पी हुआ है, कोई शराब पी हुआ है, कोई कुछ और बीमारी पाल रहा है, यानी इतनी बुराइयां ठोक दी कि इनको इतना निर्मल करना बड़ी मुश्किल हो रही है। तो ये नियम ठीक ना रख पाते, इस कारण से भी लाभ नहीं हो पाता। तो इस, अब ये ऐसा समय आ गया है कि हमारे लाखों की संख्या में भक्त श्रद्धालु हो गए, इनके सुख इतने हो गए, इनको ऐसा ऐसा लाभ दिया परमात्मा ने, तो इनके सुखों को देखकर रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी अब ये फड़कन लग गए, ऐसे चौकन्ने से हो रहे हैं कि इनका ऐसा क्या है, ना तो देवता पूजते, ना ये छठ अठम सातम की को खीर बनाते, ना मौस पूजते हैं, और फिर भी इनका सुख हो रहे हैं। तो ऐसे अब वो लोग जो दुखी हैं वो आन लग गए और यहां आएंगे। दास ये ज्ञान उनको चाहता है कि ज्ञान करावा पहले, सुख तो भगवान देगा ही देगा जब नीत शब्द लगे रहे, क्योंकि ये सुखदाई परमात्मा है, पाप नाशक है, इसका स्वभाव है परमात्मा का कि जो इसकी शरण में सच्चे दिल से लग जाएगा, ये नाम जाप करेगा, उसके पापों को क्षमा करेगा ही करेगा। लेकिन ये ज्ञान ना होने से वो फिर मार खा जाएगा और काल के जाल में फंस जाएगा, परमात्मा की सारी मेहनत विफल जाएगी। उस पुण्य आत्मा को शरण में लेकर सतलोक की जानकारी देना चाहते थे, और वो सतलोक का ज्ञान न होने से उसके हृदय में ये नहीं जचा कि कबीर भगवान है और सतलोक एक स्थान है जहां जाकर हम सदा सुखी होंगे, तो तब तक यहां से हृदय नहीं हटेगा आपका। पुणात्मा उस तत्व ज्ञान से ही आप यहां से पार हो सकोगे, क्योंकि तत्व ज्ञान के माध्यम से परमात्मा हमें ये बताया करते हैं कि एक दिन आपका शरीर खत्म होगा। यह तो हार्ड एंड फास्ट रूल है, यह तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपकी मृत्यु होगी, चाहे 60 साल में हो, चाहे 80 साल में हो, चाहे 90 वर्ष में हो, और हो सकता है बीच में भी हो जाए, ये काल का अपना विधान है। तो पुण्यात्माओं ये तो आपको पता लग जाएगा कि मृत्यु होगी, जिस पुत्रों को पुत्री को संतान संपत्ति को हम अपना माने हुए हैं ये अपने साथ नहीं रहेगी, ये अपने साथ नहीं जाएगी, हमने यहां से जाना पड़ेगा। और इतना भी हमारा एक नैतिक फर्ज बना है कि जिनसे हम संबंधित हैं, परमात्मा ने हमारे को बच्चे दिए हैं, बेटा बेटी दी है, माता पिता हम हैं हमारे, तो इनका कर्तव्य कर्म भी हमने करना है प्रभु का आदेश मान के, एक दूसरे का जो संस्कार है तो वो भी हमने यहां निमटाना है, और एक दूसरे के संस्कार को भी परमात्मा की शरण में आने से और आसानी से निमटा पाएंगे हम। तो फिर ये काम, ये जीवन में जो कुछ करना है हमने, वो करते हुए परमात्मा की भक्ति करेंगे, और उद्देश्य ये रहेगा कि हे भगवान हमारा फिर जन्म ना हो, ये परमात्मा कहीं फिर दोबारा इस काल के कोल्लू में फिर ना पड़ जावा। तो उसके लिए परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, क्या समझाते हैं। तो पुणात्मा आपका हृदय न्यू मान जाएगा कि यहां से तो जाना पड़ेगा, और क्यों ना इसी स्थान पर चलना, जहां जाने के बाद फिर मृत्यु ना हो, कभी बुढ़ापा ना हो, वहां कोई रोग ना लगता हो, तो ऐसा नालायक कोई नहीं होगा जो जिसका न्यू पक्का यकीन हो जाएगा कि सचमुच कोई स्थान है वहां पर, और वहां जाने के बाद फिर दुख नहीं होते, वहां जाने के बाद मृत्यु नहीं होती, सदा युवा शरीर रहता है। एक बार आपका जन्म होगा फिर कभी मृत्यु नहीं होगी, और युवा शरीर होकर के कंस्टेंट हो जाएगा फॉर एवर। तो आपके मन में ये ना सोचना कि ये दास कह रहा है, नहीं, ये परमात्मा कह रहा है। परमेश्वर ने यहां आकर के ये ज्ञान दिया, उसका उद्देश्य, उसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, जैसे कबीर जी परमेश्वर हैं, हम ये सोचा कि कोई लालची लोभी था, कोई स्वार्थवश, कोई अपना रोजी रोटी के लिए झूठ झाठ बोल के अपना गुजारा कर रहा था, वह भी बात नहीं थी। परमेश्वर अपने हाथों से काम करते थे, कपड़ा बुनते थे, और जो कपड़े बुनने की जो मजदूरी आती थी, उस मजदूरी से अपना जो परिवार था मुंह बोला, दो माता पिता थे, मुंह बोले माता पिता, उनके अपने माता पिता नहीं थे, और एक लड़का और एक लड़की थे जो मुर्दे जिंदे किए थे कबीर जी ने, वो उनके साथ रहा करते थे। तो उन सबका निर्वाह अपने मजदूरी से करते थे, और जो पैसा बच जाता था उसका भंडारा करते रहते थे। वो उदाहरण देने आए थे हमारे को कि परमात्मा पाने के लिए तुम ये सोचते हो कि घना धनी घना दान करता है वही पार होगा, या ऊंच जाति का ही पार होगा, या ऋषि महर्षि जो जंगल में जाकर डले ढो रहे हैं साधना करते वही पार होंगे, नहीं। जैसे परमात्मा ने एक रिहर्सल करके दिखाया, एक पूरा रोल किया कि मेरे से निर्धन शायद ही कोई होगा, और जब और फिर जुलाहा जाति यानी सोदर वर्ण में, और परमात्मा कहते थे भाई मैं जो भक्ति कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं इससे मैं भी पार होऊंगा और तुम भी हो सकते हो, और ऐसा ही करके वह लीला की थी दाता ने। मगर स्थान है गोरखपुर शहर के पास 25 किलोमीटर की दूरी पर मगर नगर है, वहां सैकड़ों हजारों व्यक्तियों के सामने, दो नरेशों के सामने, बिजली खां पठान काशी नरेश और ना बिजली खां पठान मगर नरेश, मगर का नवाब, और वीरदेव सिंह बघेल, काशी के नवाब नरेश, इन दोनों के और उनकी सेना और दर्शक उन सबके सामने सह शरीर परमात्मा सतलोक गए थे। उन्होंने कपड़ा बिछाया था नीचे, एक ऊपर ओढ़ा था, तो उनका शरीर नहीं पाया था। तो परमात्मा ने यह बताया कि परमात्मा के पाने के लिए जैसी क्रिया मैंने की तुम भी ऐसे करते रहना। तो ये भी उद्देश्य नहीं कह सकते कि उसने आकर के झूठ झाट बोल दी होगी कि ऊपर सतलोक है और शायद लोग मेरे पीछे लाग जाएं, इसलिए तो किसी लालच भी नहीं था मालिक को। तो और फिर उसके बाद उन जिन्होंने परमात्मा को देखा, सतलोक को देखा, उन महापुरुषों ने आकर के फिर वापस फिर यही बताया कि वहां वो सुखदाई स्थान है, हम देख कर आए हैं। उनमें कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो हरियाणा के अंदर हुए हैं जिला झज्जर गांव छुडानी में, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गीसादास साहिब जी। इन महापुरुषों को परमात्मा लेकर स्वयं आकर के यहां से पृथ्वी से सतलोक लेकर गए और उनको वापस यहां पर छोड़ा और फिर उन्होंने कलम तोड़ व्याख्या की उस सचखंड और सतलोक की कि वहां जाने के बाद फिर कोई दुख नहीं होता आपको और वहां आपको सदा मानव शरीर रहेगा और वहां आप सदा सुखी हो गए। अब दास का उद्देश्य है कि परमात्मा की महिमा की कुछ कथा भी आपको सुनाएगा और साथ में इन सदग्रंथों से भी परिचित कराएगा जिससे आपके मन में आपकी आत्मा में यह स्वीकार्य हो जा कि कबीर इज गॉड है, वे कबीर परमात्मा है और जो उन्होंने कहा है वो वेद और गीता और सब समर्थन कर रहे हैं, उनमें भी ऐसा ही लिखा है। तो वो पूर्ण परमात्मा थे जिन्होंने अपनी जानकारी आप ही आकर दी। पहले परमात्मा आकर के हमें यहां से दिल हटाते हैं कि आप जी जो साधना कर रहे हो, इन साधनाओं के करने से आपकी जन्म और मृत्यु का रोग समाप्त नहीं हो सकता। तो कैसा ज्ञान देते थे प्रभु? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब ये सुख के सागर को डिफाइन करेंगे थोड़ी सी। सुख का सागर किसे कहते हैं? कि जहां पर दुख नाम की चीज ना हो। सागर माने समुद्र, जैसे समुद्र के अंदर आप दूर चले जाते हो जहाज में बैठ के, तो वहां फिर कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती, या तो वो जहाज या समुद्र, जल ही जल। तो सतलोक के अंदर, सतलोक सुख का सागर है, वो स्थान है। सतलोक माने अविनाशी अमर स्थान, सत माने अमर और सत माने अमर, लोक माने स्थान, शाश्वतम स्थानम। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस तत्ब्रह्म की शरण में जा, जिसके बारे में 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की मैं जो तुझे बता रहा हूं मेरे ज्ञान का आश्रय कर ले, कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। उसके बाद तत्वदर्शी संत से ज्ञान सुनने के बाद और उस तत्ब्रह्म को समझने के बाद कि वो तत्ब्रह्म कौन है और पूरा अध्यात्म ज्ञान को समझने के उपरांत और इस सभी कर्मों को समझने के उपरांत वो प्राणी जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है। जरा मीन बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु, बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। अब सबसे बड़ा कैर इस जीवन में बुढ़ापा है। मान ले किसी की टांग भी कट रही है, कोई अंधा भी है और युवा है तो भी दुख महसूस नहीं करता, और वो अंधा भी और टांग भी कट रही, हाथ भी कट रहा और बुढ़ा भी होगा जब देखिए कि बनेगी इसके साथ में। तो बुढ़ापा सबसे बुरा कहर है इस जीव के ऊपर, और फिर मृत्यु उसते ही बुंडा। आज चाहे को 90 साल का हो गया, चाहे 80 वर्ष का है, उठ कर बैठाते भी दूसरे हैं तो भी मरना नहीं चाहता प्राणी। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि ये ऐसे लोग से आया है जहां इनकी मृत्यु नहीं होती थी। इस आत्मा को ये मरना और बुढ़ापा कति पसंद नहीं, क्योंकि हम ऐसे लोक में रहते थे जहां हमारा बुढ़ापा और मृत्यु नहीं होता था। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। सर्व भाव का मतलब है अनन्य मन से, अव्यभिचारिणी भक्ति से उस परमेश्वर की शरण में जा। व्यभिचार क्या होता है कि जैसे किसी बहन का ब्याह हो गया और वो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष में आस्था रखती है, वह व्यभिचारिणी होती है, तो उसका कितना सत्कार नहीं हुआ करता। तो ऐसे ही जो अव्यभिचारिणी, गीता जी में लिखा कि अव्यभिचारिणी भक्ति से उस परमेश्वर की भक्ति कर, यानी अन्य देवताओं से कोई आस्था नहीं रखा कि इसने मुझसे इससे मुझे कोई सुख और मैं इसकी पूजा कर लूं। अपने पति यानी अपने मूल मालिक से ही आस्था रखे, जो भी मुझे चाहिए उसी से प्रेर करूं, प्रार्थना करूं, अन्य किसी देवता से डिमांड नहीं करे। यानी अगर हम परमात्मा कबीर जी की साधना करते करते और देवताओं से बीच बीच में डांडी मारे है, दुर्गा तो न्यू कर दिए है, भगवान शिव जी तो मेरा सिद्ध करिए, दया करिए, तो ये व्यभिचारिणी भक्ति है। यानी सर्व भाव से नहीं लग रहे हम। कबीर परमात्मा जी कहा करते थे कि 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, 1 दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो गुरु जी सतगुरु के द्वारा बताए गए उस सत मंत्र को और सत साधना को करता रहे, और 1 दिन आन उपासी, ओए होए, 1 दिन आन उपासना कर ले, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा है 1 दिन भी कर ली तुमने, कहते वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी, यानी वो काल के जाल में फिर चली जाएगी। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से यानी और किसी देवता में श्रद्धा मत रख, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के बाद उससे प्राप्त ज्ञान के आधार से उस एक परमात्मा की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला जो कभी नष्ट ना हो, स्थान माने लोक कहो देश कहो उसको धाम कहो, उस सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए साधना बताता है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ, उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का ओम तत् और सत्य तीन मंत्र का जाप है, और यही निर्देश है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, बस यही मंत्र करना है। ओम तो सीधा मंत्र ब्रह्म का है, ये सत ये सांकेतिक है, तत् और सत दो सांकेतिक है, कोड वर्ण ये दास बताएगा। इस पृथ्वी पर दो मंत्रों को देने का कोई अधिकार नहीं है किसी को वर्तमान में। तो इन तीन मंत्रों के जाप से हम सतलोक जाएंगे, और सतलोक कैसा है उसको डिफाइन करते हैं, शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुखा सागर सोई। अब सतलोक में जाने के बाद ना बुढ़ापा और ना मृत्यु, दोनों कहर टल गए, और कोई रोग नहीं है, शरीर 5 तत्वों से नहीं, वह एक नूर तत्व से है, एक प्रकाश यानी नूर एक तत्व से बना हुआ शरीर है। अपुण आत्मा जैसे ये शरीर हमारा 5 तत्व कौन कौन से हैं, जैसे मिट्टी वायु अग्नि और जल और आकाश, प्रकाश अग्नि प्रकाश वायु, तो इन सब का समावेश से बना हुआ है। इसका प्रारूप बदल दिया, जैसे घास फूस पौधे ये गेहूं बाजरा ज्वार ये 5 तत्व से उत्पन्न हुए, इनको माता पिता ने खाया, उसका प्रारूप बदल करके फिर हमें ये ऐसा 5 तत्व का ऐसा पुतला ऐसा शरीर है, ये 5 तत्व से ही, पर इसको ऐसा संशोधित कर दिया कि ये इस रूप में आ गया। ऐसे ही वो नूरी शरीर में वहां से हमें मिलेगा, वो एक तत्व का होगा, उसमें कोई किसी प्रकार का भी रोग नहीं होगा, वहां कोई विकार आपके अंदर नहीं रहेगा, राग द्वेष नहीं होगा। अब उसके बारे में क्या बताते हैं, वहां जाने के बाद आपको कितना सुख होगा, जैसे आप कभी कभी एकांत में बैठे हो और एक अंदर से किसी ऐसी हिलोर उठती है कि कोई भी दुश्मन नहीं लगता, सब अपने से लगते हैं, चाहे कितना ही कोई कष्ट दे रखा हो हमारे को, उसके प्रति भी हमारे अंदर दया भावना भर जाती है, और वो होती है थोड़ी सी देर की, मिनट भी मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा नहीं रहती, एक मिनट की होती है, और उसके बाद फिर हम 100 कोशिश कर लें किसी के बाद द्वेष के प्रति द्वेष ना रखें या ऐसी कोई चिंता ना बनावें, वो नहीं हो रह सकते, हम हमारे बस की बात नहीं। तो वो संख वो एक लहर मेर की आई थी और फिर वो सारी कैर की लहर है, उसको ऐसे कर दूंगा, वो जो नुकसान हो गया, फलाना था, लड़की ब्याही थी, बटेऊ पति दारू पी हुए है, रोज पीटता है, ऐसा कर, यानी इस प्रकार के कितने टेंशन हमारे ऊपर एकदम सवार हो जाते हैं। तो सतलोक में ऐसा नहीं है, संखों लहर मेहर की उपजो कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वहां संखों लहर मेर की उपजे, ऐसे कोई कहर नहीं वहां पे, तो वो सुख सागर है, उसके लिए कहते हैं मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधूर उतनागर, ओ हो वहां आपको बहुत आनंद होगा। शब्द सिंधु माने समुद्र, शब्द माने अविनाशी, शब्द एक ऐसी शक्ति है जिसका कभी नाश नहीं होता, तो शब्द अविनाशी शब्द से ही अविनाशी, उसे उपमा से शब्द को भी अविनाशी बोला जाता है। और रत्नागार, आगार माने डिपो, खान यानी वहां सुख की खान है। तो फिर क्या बताते हैं कि यदि तू ये साधना नहीं करेगा जो हम बता रहे हैं, उसके ना करने से क्या होगा कि कोट जन्म तन भर मत हो गए कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम लिया ये मिला न निर्गुण रासा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वृंद्रम राया, विष्णुनाथ के लोक कुंजा के तो फिर भी उल्टा आया, असंग जन्म तन मर्त्या हो गए जीवित क्यों न मर रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे, दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया, सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पदमल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना, चार मुक्ति झा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर सव मिले राम अविनाशी। अब कितना इस एक ही शब्द को, इस एक ही कविता को जो परमात्मा ने आके सुनाई है, यानी गरीब दास जी को परमात्मा कबीर जी मिले छुड़ानी गांव के खेतों में, और वहां से उनकी आत्मा को, 10 वर्ष के थे गरीब दास जी, उनकी आत्मा को परमात्मा यानी उस जीव को लेकर गए सचखंड सतलोक में, और फिर वहां ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, स्वर्ग और नरक दिखाए, इंद्र का राज दिखा, इंद्र से बात कराई, इंद्र की भी घिघी बन रही है कि मैं तो 72 चौकड़ी युग करने के बाद फिर गधे की योनि में जाऊंगा, और फिर भी त्यागने को तैयार नहीं है उस पोस्ट को, सद्भक्ति करने को फिर भी तैयार नहीं, क्योंकि ये नकली सुख में इतना रंग चुका है। उसके बाद फिर परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया, तो उस परमेश्वर कबीर जी की उस आंखों देखी महिमा को, उस पूर्ण परमात्मा की लीला को गरीब दास साहेब जी ने अपने अमृतवाणी में कलम तोड़ ढंग से लिखा है। उस उन्हीं के द्वारा, कबीर जी द्वारा प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से ये ज्ञान गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ साहिब में दिया हुआ, जो इनका ये अखंड पाठ, ये पाठ चल रहा है, ये उसी ग्रंथ का चल रहा है जो गरीबदास जी ने आंखों देखा विवरण लिखा हुआ इसमें, और उन्हीं से ये दास आपको सत्संग करके सुनाता है। और फिर उसको तुलना करते हैं सदग्रंथों से, वेदों, गीता जी, कुरान पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब आदि से, तो वो सत्य आपको मिलेगा, वो सत्य मिलता है। तो क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भर मत। फिर गरीबदास जी ने आकर के फिर ये सच्ची कहानी बताई कि कबीर जी की भक्ति बिना त्रिके दुर्गति होगी, उस एक परम अक्षर ब्रह्म की शक्ति भक्ति के बिना, यथार्थ नाम के जाप बिना और परम संत के बिना आप कितने दुख पाते हो। कोटि जन्म तन भर मत हो गे कुछ ना हाथ लगे रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। अब जैसे आज आपके पास सारी व्यवस्था, मान लीजिए संतान भी है, बेटा बेटी है, कार कोठी है, व्यवसाय भी आपका अच्छा चल रहा है, एक बात तो ये भूल जाना कि ये आपने कमाया है, या आप एजुकेटेड हो गए, गणे पढ़ गए, पढ़ने से आपको अच्छा कोई पोस्ट मिल गई, या बिजनेस आपका अच्छा चला लिया, आपने कर लिया, आप नहीं कर सकते। ये तो आपका पूर्व जन्म का किया हुआ प्रारब्ध, आपके पुण्य और पाप, आपके जो लिखे हैं संस्कार में, वही मिल रहा है। इससे कम और ज्यादा आप जी को नहीं मिल सकता, चाहे कितना पैर पीट लेना। आज कोई सुखी है तो अपने पिछले पुण्यों से, कोई दुखी है तो पिछले पाप से। जब तक इस जीव के पुण्य चलते हैं तब तक तो ये फूला नहीं समाता, इसको सारे सुख रहते हैं, और जब ये पाप का दौर शुरू होता है इसके ऊपर कैर टूटने शुरू हो जाते हैं, फिर ये अब कितना इधर उधर भागता है, भगवान की तलाश करता है। तो परमात्मा कहते हैं सुख में सुमण ना, दुख में सुमण सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमण करे तो दुख का हेकु हो। सुख में सुमण किया नहीं फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि आज तेरे पास मान लीजिए सब व्यवस्था है, कल आपकी मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन तेरे पुण्य समाप्त हो गए, और साथ में मान लीजिए कुछ ऐसी पुण्यात्मा भी हैं जो अच्छी पोस्ट पे या अच्छे कोई राजा भी बने हुए हैं, और राज करते करते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, हम इस नकली सुख में राजा को सबसे घना सुखी मानते हैं, और राज करते करते भी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो नेक्स्ट जीवन में क्या होगा जो सत भक्ति नहीं कर रखा। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, माटी लदे कुम्हार के फिर घास न डाले कोई। उस पुनकर्मी प्राणी की जो राजपद पर थार भक्ति ठीक करी नहीं, अगले जन्म में गधे की योनि में जाओगा, और मट्टी लदेगी कुमार, काम करेगा कुमार के घर पे, भोजन खाओगा कुरडिया पे, यानी बाहर जंगल में जाएगा पेट भरने के लिए। पुण्यात्मा ये परमात्मा के वचन है, किसी बालक की बनाई हुई दंत कथा नहीं है जो दास आपको सुना रहा है, और आपके हृदय में ऐसी समा जानी चाहिए जैसे सीमेंट में ईंट ला दिया। अब वो राजा गदा बनेगा, ए भगवान, अब किसी को जरा सा भी सुख है उसको ये कह दे भक्ति कर ले भाई ना तो तू गधा बनेगा, न्यू कहे किसने देखा है, अन्यू को फिर कहेगा देखी जाएगी, फिर तू के देखा, फिर तो कुमार देखा, गधा बने पाचे कटप मारेगा लठ ढाई मन का बोरा, न्यू कह देखी जाएगी। अब देखना तो अब है, ज्ञान को पहचान, भगवान को पहचान, बुराई त्याग बावड़े और कर भक्ति दिन रात, फिर क्या देखा, फिर तो लठ लगेंगे सारी उम्र, फिर कुत्ता बनेगा कि तो सुअर बनेगा, बोला देखी जाएगी। और जिसने जरा सा भी सुख है फिर गुटी लावे, वह गुटी छूटे नहीं, नाम तो लेने दिल करता आत्मा का तो, लेकिन मन ना टिकता, यो तो एजेंट है यहां फंसाए रखने का। फिर उसके सामने वह गुटी याद आवे, मित्रों के साथ बैठ के हर, फिर बीड़ी ना छूटे, यू काल ना छूटने देता कि कहीं इसकी भक्ति कर्म अच्छे ना बन जाए, यू तेरे जाल से निकल जाए। लेकिन आप सच्चे दिल से मालिक को समर्पण करो, कि परमात्मा हम जीव हैं, हमारे बस की बात नहीं है, आप बता रहे हो कि वो प्रबल शक्ति है काल भी और वो हमें फंसाए रखना चाहता है, आप ही दया करो अपने दासों पर, हमारी बुराई छुटवाओ। लेकिन सच्चे दिल से फिर देखना आपके हाथ कांप जाएंगे जिस दिन आप शराब की तरफ या बीड़ी की तरफ हाथ करोगे।